हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 21। इस आध्यात्मिक ज्ञान को अध्ययन एवं श्रवण करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माध्यस्य यतो वयादितरतश चातिष्वभि स्वराट तीने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुहुयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकै तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमात्रवास्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधरम शिवासुदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। स्कंद वन अध्याय वन श्लोक नंबर 22। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ऋषिगण कहते हैं, त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिशतां कलिं सत्व हरं पुंसां कर्णधार इवाणवम्। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिशतां कलिं सत्व हरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिशतां कलिं सत्व हरं पुंसां कर्णधार इवाणवम्। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिशतां कलिं सत्व हरं पुंसां कर्णधार इवाणवम्। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिशतां कलिं सत्व हरं पुंसां कर्णधार इवाणवम्। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिशतां कलिं सत्व हरं पुंसां कर्णधार इवाणवम्। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिशतां कलिं सत्व हरं पुंसां कर्णधार इवाणवम्। त्वं न संदर्शितो धात्रा निस्तरं दुस्तरं निस्थितिशतां कलिं सत्व हरं पुंसां कर्णधार इवाणवम्। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिशतां कलिं सत्व हरं पुंसां कर्णधार इवाणवम्। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिशतां कलिं सत्व हरं पुंसां कर्णधार इवाणवम्। शब्दों का अर्थ देखिए। त्वम अर्थात आपने, न मतलब हम सबों को, न ऐसे होता है ना, उसका मतलब होता है हम सबों को, और न लिखा होता है उसका मतलब होता है नयनम नयना, ये वाला होता है ना उसका मतलब होता है नहीं, लेकिन न का मतलब होता है हम सबको, ठीक है। तो हम न संदर्शितो, संदर्शितो मतलब मिल गए हैं या मिलाया है धात्रा। यहाँ पर सोनिक आदिक ऋषि सुत गोस्वामी को कहते हैं, कितना बड़ा भाग्य है हमारा, भगवान की कितनी कृपा हुई है। ये धात्रा का मतलब होता है सौभाग्य है हमारा कि आज भगवान की कृपा से आप जैसे महामुनि से हमारी भेंट हो गई है, हम आपसे मिल गए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि कृपा बरस गई है, अभी खाली हमें इस कृपा में भीगना है। मतलब आगे कहते हैं दुस्तरम, दुस्तरम का मतलब होता है बहुत कठिन, दुर्लंघ्य, जिसको पार करना बहुत ज्यादा कठिन हो। निस्थितिशतम परंतु पार करने की इच्छा वालों के लिए, अभी कोई ऐसी चीज है जिसको पार करने की इच्छा तो है परंतु उसको पार करना बहुत कठिन है, तो वो क्या है, कलिम अर्थात कलयुग। यहाँ पर ऋषिगण कह रहे हैं ये कलयुग है ना, उसके अपराधों भरा ये जो युग है वो अपराधों का समुद्र, आगे बोलेंगे इवाण कर्णधार इवाणवम, अर्णवम का मतलब होता है समुद्र, यानी ये कलयुग जो है वो ऐसा अपराधों का भरा हुआ समुद्र है कि हम यदि इच्छा भी करते हैं तो भी उसको पार करना अत्यंत ही कठिन है। क्यों? आगे कहते हैं कलिम सत्व हरम पुंसाम, सत्व हरम है क्योंकि अच्छे गुणों को हरण कर देता है, हमारे अंदर जो सत्व गुण है सत्व हरम पुंसाम, यानी जो मनुष्य है उनके अंदर अब प्रकृति में आने के बाद तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, परंतु यह कलयुग की बहुत बड़ी हमारे ऊपर दुष्टता है कि वो हमारे सत्व कलिम सत्व हरम पुंसाम हमारे सत्वगुण को हरण कर देता है। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु ने अपने नाभ कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी का मन नहीं था क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को प्रेम करना है, कृष्ण की सेवा करना है, मैं कृष्ण का दास हूँ तो मैं सृष्टि की यदि रचना करूँगा तो उसके लिए मुझे रजोगुण विकसित करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं जैसे ये गीता का सिद्धांत है कि यदि किसी चीज की रचना करनी होती है सृष्टि करनी होती है तो रजोगुण में रहकर की जा सकती है, और यदि किसी कोई भी वस्तु को यदि उसको पालन करना होता है उसको मेंटेन करने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता होती है, और उसका संहार करने के लिए उसको बिगाड़ने के लिए उसको तोड़ने फोड़ने के लिए तमोगुण की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता कहलाते हैं क्योंकि वो सृजन करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं इसलिए वो सत्वगुण के देवता कहलाते हैं, और शिव जी क्योंकि संहार करते हैं इसलिए वो तमोगुण के देव कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब भगवान ने ये कार्यभार सौंपा तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जीवन में केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण का नाम स्मरण करना चाहिए, और यदि मैं रजोगुण में रहकर सृष्टि का सृजन करूंगा तो फिर मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। ये सिद्धांत है, रजोगुण में रहकर आप अपने माइंड को भगवान के चरणों में कंटिन्यूअस स्थापित नहीं करें, क्योंकि माइंड जो है वो पहले से भरा हुआ है कि मुझे ये कमाना है वो कमाना है ये करना है वो करना है, जब इतना सारा कार्यभार है घर को पालना है फैक्ट्री को देखना है बिजनेस को देखना है शॉप को देखना है ये सब करना है, और उसके साथ साथ वो भक्ति के अंदर पूरा हम सततम चिंतन तो हम नहीं कर सकते, नित्यम ये नहीं सब कर सकते, हम समय निकालते हैं लेकिन जो कंटिन्यूअस भक्ति है ना वो केवल शुद्ध सत्व में रहकर की जा सकती है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा भगवान आप मैं तो आपका दास हूँ आपकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है, परंतु मैं रजोगुण में रहकर यदि सृष्टि को सर्जन करूंगा तो मन लगाना इम्पॉसिबल हो जाएगा ना आपके चरणों में, तो फिर मैं भजन कैसे करूंगा। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को अपने पास बिठाया और ब्रह्मा जी को कहा, ऐसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, यदा तु भगवान तस्मे श्रीमद् भागवत पुराण, यानी विष्णु भगवान ने उनको भागवतम महापुराण श्रवण कराया पूरा, भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोक यानी जन्माद्यस्य यतोन यहाँ से लेकर नाम संकीर्तने तस्मे यहाँ तक पूरा भागवत महापुराण ब्रह्मा जी को बैठ के सुनाया और उनको यह आदेश दिया कि आप इसको रोज पढ़ना और इसको अध्ययन करना, इनके शब्दों को मनन करना, फिर आपको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सब प्रकृति के गुण कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे। आप नित्य शुद्ध सत्वगुण में रहकर भगवान का भजन कर सकते हैं। तो वास्तव में भक्तों, ये श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है वो हमें निर्गुण कर देता है, प्रकृति के गुणों से हमें परे कर देता है, क्योंकि ये शुद्ध सत्व है। परंतु यहाँ पर तो ऋषिगण की समस्या ये है कि वो कलयुग के विषय में बता रहे हैं कि कलिम सत्व हरम पुंसाम, कि कलयुग जो है वो मनुष्य का सत्व गुण हरण कर देता है, कर्ण धार इवाणवम। तो फिर हमें इस कलयुग को, ये जो समुद्र है कलयुग का, उसको पार करने के लिए हमको कर्णधार चाहिए। हाँ, कर्णधार का मतलब होता है कर्ण, अब जैसे कर्ण कान को बोलते ना, तो यहाँ पर कश्ती, एक कश्ती होती है ना, जो उसके जो दो साइड में चक्कू होते हैं ना, जिससे चलाते हैं, चक्कू बोलते हैं, वो चलाते हैं ना, उसको भी बोलते हैं कर्णधार, और कर्ण बोलते हैं उसको भी, ठीक है। और जो उनको चलाता है ना, जो चप्पू कश्ती चलाने वाला नाविक जो होता है, मल्लाह, उसको बोलते हैं कर्णधार, जिसने कर्ण को धारण किया होता है, जो उसको चलाते हैं। और दूसरा, कर्णधार का आचार्यगण ऐसे भी बताते हैं कि जो भगवान की लीलाओं को कर्ण में धारण कराता है, यानी कर्ण कहते हैं कान को, और धार का मतलब होता है धारण कराने वाला, तो जो भगवान की पवित्र लीलाओं को श्रवण कराता है उसे भी कर्णधार कहते हैं। अनुवाद देखिए, ऋषिगण कह रहे हैं, हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ्य सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नाविक के रूप में ग्रहण कर सके। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी प्रथम लाइन में ही कलयुग के विषय में बताते हुए कहते हैं, कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत ही घातक है। वास्तव में भक्तों, ये कलयुग जो है वो अपराधों भरा युग है। इसमें क्या अपराध है, कितने अपराध हैं, तो कहते हैं कले दोषे निधे राजन, इसके अंदर अपराधों की कोई संख्या नहीं, कोई गणना नहीं। इतने अपराध हैं जो काउंट भी नहीं किए जा सकते, जिनका कोई हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। वास्तव में जो शास्त्र में बड़े से बड़े महा अपराध बताए गए हैं, वो कलयुग के वासियों को अपराध लगते ही नहीं है। जुआ खेलना, शराब पीना, मांस आहार करना, परस्त्री संग करना, ऐसा लगता है यहाँ पर इस कलयुग में एकदम नॉर्मल बात है, कुछ उसमें अपराध जैसी भावना तक नहीं होती है। बड़े बड़े यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में हम सुनते हैं ऐसा कि जिस प्रकार से मेन्यू दिया जाता है ना खाने का, उस तरह से मेन्यू दिया जाता है कि आपको है ना कौन किस टाइप की है ना पार्टनर, बेड पार्टनर चाहिए रात के लिए। तो इतना घिनौना ये अपराध। और इसके अतिरिक्त मांस आहार, पहले ये पशु मांस खाया करते थे, मतलब पशुओं का वध करके उनको खाया करते, लेकिन आज तो यहाँ तक सूचनाएं भी आती हैं कि मनुष्य मनुष्य का मांस खाना शुरू हो गया है। अभी कल भी एक मैसेज में हमने पढ़ा था, बल्कि फोटोज और सब बताया था कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसा बताया भी जाता है, ताइवान एक शहर, यहाँ पर एक कंट्री है, उसमें क्या कहते हैं कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है, जो कि अब क्योंकि अवैध संघ इतना बढ़ गया है कि वर्ण संकर उत्पन्न हो रहे हैं, तो जो बच्चा जो कि माता पिता एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो जाके सेल कर देते हैं। तो सेल भी कहाँ करते हैं, रेस्टोरेंट में, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनमें सेल कर देते हैं। और वो ये भी लिखा, प्राइस भी लिखी है कि कुछ ना 200-150 डॉलर में उसको सेल कर देते हैं। और फिर वो छोटा सा बच्चा जिसके इतने कोमल कोमल अंग होते हैं, उसको फ्राई किया जाता है या फिर उसके मुंडी अलग किया जाता है और हाथ पे अलग करके उसको गार्निशिंग करके फिर सर्व किया जाता है, और फिर उसको कांटे और छुरी से जिस तरह से मांस चिकन और इस तरह खाते हैं उस तरह से खाया जाता है। वास्तव में भक्तों, ये सुनकर घिन आती है उन मनुष्यों को, ये मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। परंतु कलयुग का ऐसा प्रभाव है, शास्त्र कहता है कि कलयुग में ना केवल पशुओं को, अभी तो कलयुग में भाई भाई को काट कर खा जाएगा, मनुष्य अपने संतान को काट कर खाएगा। ऐसा अभी हो, ये बहुत ही भयानक कलयुग अभी आने वाला है। वास्तव में कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, जिसमें से अभी केवल 5,000 साल ही बीते हैं, और कलयुग के प्रभाव को हम देख रहे हैं कि घर घर में अपराध होता है, और अपराध करने वाले इस बात को रियलाइज भी नहीं करते कि हम अपराध कर रहे हैं। तो अभी 4,27,000 साल जो बाकी बचे उनमें कितने अपराध होंगे, तो इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। लेकिन यह तो शास्त्र विदित बात है कि कलयुग बहुत ही अशुद्ध युग है, और इसके अंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि युग अत्यंत ही घातक है। यह मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के निमित्त मिला है, किंतु इस युग की कायालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी तथा लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। कलिम सत्व हरम पुंसाम, मनुष्य के समस्त कोमल भावना हृदय के अंदर जो है वो सब समाप्त हो जाएंगी, सत्व गुण उसका नष्ट हो जाएगा, आयु नष्ट हो जाएगी, और इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि 12वें स्कंद में कलयुग के जितने भी दुष्परिणाम हैं वो बताए जाएंगे। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। यानी कि जो चाहते भी हैं, ऊपर श्लोक में पहले लाइन में लिखा दुस्तरम निस्थिति शताम, जो चाहते हैं कि हम इस कलयुग के घोर समुद्र को पार करें, उनके लिए ये बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में जीव का सत्व गुण, जीव की जो शुद्ध भावनाएं, जो मानसिक शुद्ध तत्व हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशन इतना यहाँ का खराब है कि हम चाहते हुए भी शुद्ध सत्व में अपने आप को टिका नहीं सकते, क्योंकि लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। अंतमतात्वाश के साथ साथ उन्मत्ततावश, यानी कि इतना घमंड है, इतना अहंकार है यहाँ के लोगों के अंदर, कोई शुद्ध भावना नहीं, और वो साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कलयुग के लोग ये नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। ये जो जीवन हमें आज मिला है वो इंद्र तृप्ति के लिए मिला ही नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार के लिए जो यात्रा हो रही है ना हमारी, जो कंटिन्यूअस हम चल रहे हैं, कभी मनुष्य की, कभी हम जलचर बन के आते हैं, कभी वनचर बन के आते हैं, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी कुछ बनकर जब आते 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 आज यह मनुष्य जीवन मिला है, तो यह मनुष्य जीवन में संभव है कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, कृष्ण के साथ अपने विस्मय, जो हमारा संबंध हम भूल गए हैं, विस्मरण हो गया है, उस संबंध को फिर से स्थापित करें। हमें ये गोल्डन चांस मिला है, परंतु क्योंकि जीव अपने आप की इस जीवन के लक्ष्य को नहीं मानता। और श्रील प्रभुपाद जी कहते ये तत्व नहीं समझता कि संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक छोटा सा क्षण है। इस युग में सारी शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चे तथा कथित शिक्षा रूप यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि कोई विद्वान थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस संसार में, इस कलयुग में क्या है, सारे बच्चे जितने भी हमारी न्यू पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, उनको तथाकथित शिक्षा रूपी वैदिक घरों में जानबूझकर भेजा जा रहा है, जहाँ पर उन्हें केवल भौतिक शिक्षा दी जा रही है। आध्यात्मिक शिक्षा से उनको दूर किया जाता है, उनको यह तक नहीं बताया जाता कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ऐसी तथाकथित शिक्षा सिर्फ दी जाती है। अतएव श्री प्रभुपाद जी कहते हैं विद्वान पुरुषों को इस युग से सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी इस कलयुग के प्रभावों से बचने का एक उपाय बता रहे हैं कि यदि आप चाहते हो कि इस कलयुग के दुस्तर समुद्र को पार करो, तो जो कार्य नैमिषारण्य के ऋषियों ने किया है वही कार्य आपको करना है। और उन्होंने क्या कहा, कर्णधार इवाणहम। हम भी जानते हैं, यहाँ पर ऋषिगण का कहने का क्या मतलब है कि हम भी जानते हैं कि ये कलयुग का जो दुस्तर समुद्र है, जो दुखों, ये कष्टों भरा जो समुद्र है, उसको पार करना कठिन है, और इसको पार करने का तरीका भी पता है हमें। वो नाव कौन सी है जिसमें बैठकर हम इस संसार सागर को पार करेंगे, वो भी हमें पता है। और वो नाव है भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करना। और हम जानते हैं भगवान की कथाओं को श्रवण करने से ही और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हम कलयुग के इस दुस्तर समुद्र को पार कर सकते हैं। तो मानो सूत गोस्वामी पूछे, अगर आपको पता है तो ना वर्ड द प्रॉब्लम, क्या समस्या क्या है, करो भगवान के नाम का कीर्तन, करो भगवान की लीलाओं का कथन और भगवान की लीलाओं को श्रवण करो और उसका कीर्तन करो, तुम्हारा काम हो जाएगा और इस कलयुग के भयावह समुद्र को पार कर लोगे, जिसको बहुत ही पार करना कठिन है। उसका जब तुम्हारे पास नाव है तो फिर आपको किस बात की चिंता है। तो यहाँ पर उत्तर देते हुए सूची महाराज से सोनिक आदि ऋषिगण कहते हैं कि हमारे पास नाव तो है, परंतु नाव को चलाने वाला कर्णधार नहीं है। वास्तव में भक्तों, अगर किसी के पास नाव हो लेकिन उस नाव को चलाने वाला कर्णधार ना हो, तो वो नाव चलाना, नाव होना काफी नहीं है। क्योंकि अगर नाव बीच समुद्र में ही खड़ी रहेगी, उसको कोई चलाएगा नहीं, तो फिर नाव में बैठकर हम कभी उस पार नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को, भगवान के नाम की महिमा को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम किसी गुरु का आश्रय नहीं ले लेते। वास्तव में गुरु करना अत्यधिक आवश्यक है। जैसे अगर कोई हमारे बच्चा किसी क्लास में जाता है, स्कूल में जाता है, तो उसके पास बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसी में से पढ़ते हैं। लेकिन जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा, ट्यूशन नहीं जाएगा, टीचर जब उसको पढ़ाएगी नहीं, तब तक से वो कभी भी दूसरी क्लास में नहीं जाएगा। भले उसके पास सारे शास्त्र रखे हों, सारी किताबें रखी हों, लेकिन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि उसको वो शास्त्र पढ़ाने वाला या वो बुक्स पढ़ाने वाला टीचर उसको नहीं मिलता है। तो टीचर जो है वो इंग्लिश शब्द है, लेकिन जब भौतिक विद्या को ग्रहण करने के लिए भी आपको एक गुरु की आवश्यकता है, तो यह आध्यात्मिक ज्ञान, ये भगवान की लीला, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत समझने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम घर पे बैठ के अध्ययन कर रहे होते हैं, अध्ययन तो कर ही रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं और जप कर रहे हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। एक गुरु का होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जब गुरु की कृपा होती है ना, तभी हमें शास्त्र समझ में आता है। जब गुरु की कृपा होती है तभी हम भगवान के पवित्र नाम की महिमा को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक गुरु था, वो हमेशा अपने जो शिष्य थे उनको यही बताता था कि राम नाम जपो तो समस्त बंधन छूट जाएंगे, राम नाम जपो संसार के समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाओगे। तो जैसे गुरु बताते हैं वैसे ही है ना, शिष्य भी उसी को उच्चारण करते। तो एक जगह पर सत्संग रखी गई तो उसी गुरु का शिष्य आया और वो बार बार बता रहा था, मतलब बीच बीच में यही कह रहा था कि राम नाम जपो समस्त बंधन छूट जाएंगे। तो बताने के बाद पूछा, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो किसी को भी प्रश्न पूछना नहीं था। और फिर प्रशाद सखा के जब बाहर जा रहा था तो बाहर उस घर का एक तोता टंगा हुआ था, ऐसे तोते का पिंजरा टंगा हुआ था और तोता उसमें बैठा हुआ था। तो उसको जाके बोला सुनो, मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। तो बोला आपको प्रश्न पूछना है, बताओ क्या प्रश्न पूछना है। बोले तुम कितनी देर से बोल रहे थे राम नाम जपो समस्त बंधन छूट जाएंगे, राम नाम जपो समस्त बंधन छूट जाएंगे, संसार के समस्त बंधनों से आप छूट जाओगे। तो मैं तो जब से बोलना सीखा हूँ केवल राम नाम ही रटता रहता हूँ, लेकिन ये छोटा सा पिंजरे का बंधन भी मुझसे ये नहीं छूटा। तो फिर राम नाम भवबंधन कैसे छुड़ा सकता है, मुझे इसको बताओ कैसे होगा। तो वो शिष्य जो था वो परेशान हो गया, बोला मेरे पास तो इसका उत्तर नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु महाराज समृद्ध हैं, मैं अपने गुरु महाराज से पूछ के आपको कल बताऊंगा इसका उत्तर, मुझे अभी नहीं खबर है कि क्यों तुम्हारा बंधन नहीं छूटा। तो गया और गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज ये समस्या हो गई, अभी मैं तोते को कैसे बताऊं कि राम नाम से है ना समस्त बंधन छूट जाएंगे। तो गुरु महाराज ने उसको कहा और एक बात बताएं, बोला मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम जाके तोते के कान में ये बात बता दो। तो वो गया वापस से तोते के कान में, बोला देखो तुम अब क्या करो, बिल्कुल कुछ भी मत करो, एकदम प्राणलेस, यानी देखो तोते तुम मरने का नाटक करो, खाना पीना बंद करो, कुछ भी हिलना भी मत। तो अब तुम ऐसे ही समझो, सब लोग समझे कि आप मर गए हो। तो तोते ने वही किया, हिलना जुलना बंद कर दिया। सुबह हुई, जो तोते का मालिक था उसने उसको मिर्ची दी, पानी दिया, कुछ भी नहीं पिया। और फिर वापस से ना दोपहर को, फिर शाम को इसने सोचा अब तो तोता मर गया। तो इसने जाकर क्या किया, तोते का पिंजरा बाहर जाके खोला और इसको निकाल के बाहर रख दिया कि अब तो काम का नहीं, मर गया है। तो जैसे ही तोते को बाहर निकाल के रखा और तोता फुर से उड़ गया। तो इससे हमें ये समझने के लिए ये है कि भले उसके पास राम का नाम था, लेकिन जब तक गुरु का स्पेशल आदेश उसको प्राप्त नहीं हुआ था, जब तक गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, जब तक गुरु के आज्ञा अनुसार उसने कार्य नहीं किया, तब तक उसका राम नाम भी उसका कुछ भी फायदा नहीं कर सका। उस तरह यदि हम भी, हमारे पास भी शास्त्र है, हमारे पास भी वही भगवान का नाम है, लेकिन जब तक कि हमें किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 11th स्कंद में, स्कंद नंबर 11 में हम पढ़ेंगे, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये जो निर्देह है, मनुष्य जो जन्म है उसके माध्यम से वो सुलभ हो जाएगा, जो कि वास्तव में सुदुर्लभ है। बहुत कठिन है इस संसार सागर को पार करना, बहुत कठिन है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, लेकिन यह निर्देह यानी मनुष्य देह एक कश्ती के समान है और इस कश्ती में बैठकर आप इस भव सागर को पार कर सकते हो। लेकिन आगे कहा, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरु कर्णधारम। लेकिन तभी संभव होगा जब आप गुरु का आश्रय ग्रहण करोगे, गुरु के शरण में जाओगे, गुरु के आदेश अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे। तो यदि गुरु महाराज के आदेशों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा और मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति आपको सुलभ हो जाएगी। वास्तव में सुदुर्लभ है, बहुत कठिन है, संभव नहीं है। जब तक गुरु महाराज का आशीर्वाद, गुरु महाराज का कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। आगे लेकिन यदि हम गुरु नहीं करते हैं, यदि हम गुरु महाराज का सानिध्य स्वीकार नहीं करते हैं, यदि हम गुरु की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तो कहते हैं पुमान भवाप्ति न तरेत, पुमान भवाप्ति न तरेत। वो मनुष्य जो गुरु नहीं करेगा वो तो कभी भी इस भवसागर को कभी नहीं तरेगा। और वो कर क्या रहा है, न तरेत स आत्महात, वो क्या कर रहा है, अपनी आत्मा का हनन कर रहा है, आत्मा को अपने भगवान से मिलाने ना मिलाकर उस आत्मा का हनन कर रहा है। वास्तव में वो व्यक्ति जो गुरु नहीं करता, जो भगवान के साथ अपने सानिध्य को, भगवान के साथ अपने बिछड़े हुए रिश्ते को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता, वो अपनी आत्मा का हनन करता है। और शास्त्र कहता है वो व्यक्ति जो गुरु नहीं करता वो तो कसाई से भी ज्यादा गिरा हुआ है, क्योंकि कसाई तो पशुओं को काटता है और पशुओं का ही मांस बेचता है, परंतु वो तो अपनी आत्मा को काट रहा है, अपनी आत्मा को पीड़ा दे रहा है, अपनी आत्मा को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने के लिए मजबूर कर रहा है। जो गुरु का आश्रय लेकर इस दुस्तर समुद्र को पार करने की चेष्टा नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि वे इस कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं, तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, श्री सूत गोस्वामी या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि को नावक के यानी करणधार के रूप में ग्रहण करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता के रूप में श्री कृष्ण का संदेश ही वह नाव है। अब नाव क्या है, नाव तो सबके पास है, हम सबके पास श्रीमद् भागवतम है, गीता भी है, अन्य शास्त्र भी है, भगवान का पवित्र नाम भी है, परंतु नाव काफी नहीं है। नाव को चलाने वाला एक करणधार अत्यधिक आवश्यक है, वरना ये नाव चलेगी नहीं और एक दिन तूफान आएगा और उसमें हमारी नाव उल्टी होकर गिर जाएगी और हम इस समुद्र में तैर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि कितना भी अच्छे से अच्छा स्विमर होगा, कितना ही अच्छे से अच्छा तैराक होगा, वो कितना तैरेगा, एक दिन दो दिन पंद्रह दिन बीस दिन आखिर थक जाएगा और डूब कर मर जाएगा। उसी तरह से क्योंकि ये कलयुग जो है उसके लिए क्या कहा, कलिम सत्व हरम पुंसाम, ये कलयुग बहुत कठिन है, इसको पार करना ये सत्व ये दुर्लंघ्य है, दुस्तरम बहुत ही कठिन है इसको पार करना, और नाव के होते हुए भी जब तक चलाने वाला नहीं है तो इसको पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबको अब अपने जीवन को बचाना है और एक प्रामाणिक गुरु का सानिध्य प्राप्त करना है, और गुरु ही जब हमें शिक्षा देंगे तभी हम इस कलयुग के समुद्र को पार कर सकेंगे। गुरु की क्वालिटीज के विषय में हमने काफी टाइम चर्चा की है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि गुरु के अंदर तो अनंत गुण होते हैं, परंतु एटलीस्ट ये पांच गुण जिसके अंदर हैं, उसे हम गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। पहली क्वालिटी कि वो गुरु अपने आप को भगवान का दास समझे, भगवान में समझे। गुरु की दूसरी योग्यता कि वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि षट कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपच गुरु। भले कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, सारे मंत्र उसको खबर हो, सारे तंत्र जानता हो, लेकिन यदि वो वैष्णव नहीं है, यदि भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। और वैष्णव है यदि तो भले वो इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है सारी चीजों में, लेकिन यदि वो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है तो फिर वो गुरु बनने के योग्य है। और दूसरा तीसरी क्वालिटी तीसरी योग्यता कि गुरु कृष्ण तत्व वेता होना चाहिए, उसे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि किस शास्त्र की किस श्लोक का क्या मतलब है और शास्त्रों का निचोड़ क्या है, वेदांत क्या है और वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। गुरु को ये सब चीजें तत्ववेत्ता होना चाहिए, उसे सब पता होना चाहिए, भगवान के समस्त रूप निराकार ब्रह्म परमात्मा और भगवान के साक्षात स्वरूप से बलिबांधी अवगत होना चाहिए। और नंबर 4, गुरु को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसा कि रूप गोस्वामी बताते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहे तदीरः सर्वम् अपि मां पृथ्वीं च शिष्या। जो अपने जुबान के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध को और पेट और जनन इंद्रिय के वेग को रोक सकता है, केवल वही इस योग्य है कि वो इस पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। तो जो इंद्रियों को रोक सकता है वही गुरु बन सकता है। और गुरु जो कहता है वैसा उसको आचरण करना है, गुरु को आचार्य बनना है। ऐसा नहीं कि वो बस बोल रहा है और बोले जा रहा है कि आप लोग को ये करना है, मंगल आरती करनी है, आपको संध्या आरती करनी है, आपको भगवान के पवित्र नाम का जप करना, लेकिन खुद नहीं कर रहा है, कांदा लहसुन नहीं खा रहा है और ये सब मतलब आचरण नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा गुरु बनने की योग्य नहीं है। गुरु आचार्य होना चाहिए और गुरु की अंतिम और सबसे आवश्यक जो योग्यता है वो है कि गुरु परंपरा से होना चाहिए। तो जो परंपराएं आ रही हैं, जैसे अभी हमारे पास कलयुग में 4 परंपराएं के विषय में हमने पढ़ा है कि या तो ब्रह्म संप्रदाय या श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या कुमार संप्रदाय, इन संप्रदायों के अंतर्गत होना चाहिए। और इन संप्रदायों के विषय में भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया कि अभी हमारे पास ऑप्शन केवल एक ही रह जाता है कि यदि हम ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय को स्वीकार करते हैं और श्री प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके जितने भी शिष्य हैं, यदि वो प्रामाणिक हैं तो उनसे यदि हम दीक्षा ग्रहण करते हैं और हम इस ज्ञान को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो हमें गुरु करने के समय आंखें खोलनी है और ये देखना है कि गुरु के अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं या नहीं है। और एक प्रमाणिक गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। ये समस्त शास्त्रों का सार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।